एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं, एक ऐसी किताब की दुनिया में जिसने साहित्य पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। थॉर्नटन वाइल्डर का मशहूर उपन्यास द ब्रिज ऑफ सैन लुइस रे।
हाँ बिल्कुल, वाइल्डर मतलब अमेरिकी नाटककार, उपन्यासकार और 3-3 पुलित्जर पुरस्कार, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
सही कहा।
और ये उपन्यास जिसके लिए पहला पुलित्जर मिला 1927 में आया और एकदम से दुनिया भर में छा गया।
हाँ, और ये दिलचस्प है कि आया तो मॉडर्निस्ट दौर में जब काफी प्रयोग चल रहे थे साहित्य में, लेकिन वाइल्डर की भाषा, उनका गद्य, वो बहुत ठहरा हुआ क्लासिकल जैसा लगता है ना?
बिल्कुल।
कहानी हमें ले जाती है 18वीं सदी के पेरू, लीमा, कस्को, वो माहौल। लेकिन किताब का असली मर्म सिर्फ उस सेटिंग में नहीं है, वो एक बहुत गहरे सवाल में है। हाँ, वो सवाल जो कहानी शुरू होते ही एक भयानक घटना से उठता है।
बिल्कुल।
20 जुलाई 1714, शुक्रवार का दिन, पेरू का सबसे बेहतरीन पुल, इंकाओं का बनाया हुआ, सदियों पुराना,
अचानक टूट जाता है।
हाँ, और उस पर जो 5 लोग चल रहे थे वो सीधे नीचे खाई में।
उफ, सोचकर ही डर लगता है।
और इस हादसे का एक गवाह भी था, है ना?
हाँ, 22 जूनी पर एक फ्रांसिस्किन तपस्वी, वो खुद भी बस पुल पार करने ही वाले थे।
और ये देखकर उनके मन में वो सवाल कौंधता है जो पूरी किताब की जान है,
वही कि क्या हम संयोग से जीते हैं और संयोग से मरते हैं, या हम योजना से जीते हैं और योजना से मरते हैं।
क्या जिंदगी बस एक इत्तेफाक है, या इसके पीछे कोई मतलब है, कोई डिजाइन है?
बिल्कुल। और इसी सवाल की पड़ताल, इसी की खोज में ये पूरा उपन्यास रचा गया है। आज हम इसी पर बात करेंगे, किरदारों के सफर, कहानी के मोड़ और इसके संदेशों पर।
तो भाई, जूनिपर के लिए ये सिर्फ एक दुखद हादसा नहीं था?
नहीं, उनके लिए ये शायद ईश्वर का कोई संकेत था, एक आध्यात्मिक पहेली।
तो वो इसे एक मिशन बना लेते हैं, उन 5 मरने वालों की जिंदगियों को खंगालना,
मतलब उनकी पूरी जिंदगी की चीरफाड़ करना।
हाँ, ये समझने के लिए कि उनकी मौत क्या सिर्फ एक एक्सीडेंट थी, या विधाता की कोई स्क्रिप्ट थी, कोई उद्देश्य था।
और इसके लिए उन्होंने कितना वक्त लगाया?
पूरे 6 साल। ये कोई छोटी मोटी तहकीकात नहीं थी।
6 साल?
हाँ, वो लोगों से मिले, उनके खत पढ़े, कहानियां सुनी, किस्से जमा किए। उनका इरादा तो एक तरह से धर्मशास्त्र का विज्ञान बनाने जैसा था।
विज्ञान मतलब
वो साबित करना चाहते थे कि हर मरने वाला अपनी जिंदगी के बिल्कुल उस मोड़ पर था जहां मरना ही उसके लिए आध्यात्मिक रूप से सही था, जैसे ईश्वर के तरीकों को तर्क से सही ठहराना।
वाह, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच है, शायद थोड़ी दुस्साहसी भी, ईश्वर के मन को पढ़ने की कोशिश।
हाँ बिल्कुल।
तो ये 5 लोग थे कौन जिनकी जिंदगियों की वो पड़ताल कर रहे थे? क्या वो आपस में जुड़े हुए थे? पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं, सब अलग अलग। एक थी डाना मारिया, मार्केसा डी मोंटेमेयर, एक अमीर थोड़ी सनकी बूढ़ी कुलीन महिला।
अच्छा।
फिर पिपीटा, उनकी जवान साथी, एक अनाथ लड़की, एस्टेबान एक दुखी मुंशी, अंकल पियो दुनियादारी में माहिर, एक सलाहकार जैसा, और डॉन जेमे एक छोटा बीमार बच्चा।
बिल्कुल अलग अलग दुनिया के लोग।
हाँ, और यही वाइल्डर की कहानी कहने की कला दिखती है। ये कोई सीधी साधी एक प्लॉट वाली कहानी नहीं है।
अच्छा।
उपन्यास की बनावट ही ऐसी है कि ये एक घटना से जुड़े अलग अलग लोगों की जीवन कहानियों का एक गुलदस्ता सा है।
ये तो दिलचस्प है।
हाँ, और ये हमें, पढ़ने वालों को, सीधे उन बड़े सवालों से जोड़ देता है। किस्मत, प्यार, जिंदगी का मतलब, इन सब पर सोचने को मजबूर करता है।
तो चलिए एक एक करके इन किरदारों से मिलते हैं। शुरुआत मार्केसा डी मोंटेमेयर और पपीटा से करें।
हाँ बिल्कुल। मार्केसा, वो एक बहुत ही जटिल किरदार हैं। अमीर, विलक्षण, थोड़ी मतलब शारीरिक रूप से अनाकर्षक बताई गई हैं, और उम्रदराज।
और उनकी जिंदगी का केंद्र क्या था?
उनकी बेटी क्लारा, जो स्पेन में रहती थी और माँ से अलग हो चुकी थी, मार्केसा का प्यार उसके लिए जुनूनी था, लगभग दम घोटने वाला।
अच्छा।
उनके खत बड़े मशहूर हुए बाद में, क्लारा को लिखे गए पत्र। भाषा बहुत शानदार, हाजिर जवाबी से भरपूर, लेकिन उनमें एक गहरा अकेलापन और एक बेताबी झलकती थी।
स्पेनिश साहित्य की धरोहर बन गए वो खत।
हाँ, पर असल जिंदगी में वो गहरे अकेलेपन और एक तरफा प्यार में जी रही थी।
और पिपीटा, वो उनके साथ क्यों थी?
पिपीटा कॉन्वेंट में पली बढ़ी एक शांत, कर्तव्य निभाने वाली लड़की थी। उसे मार्केसा की देखभाल उनकी साथी के तौर पर भेजा गया था। वो भी अकेली थी, अपनी दुनिया से दूर।
तो दो अकेली आत्माएं एक साथ।
लेकिन मार्केसा की जिंदगी में कुछ बदलाव आता है ना?
हाँ, एक अहम मोड़ आता है।
कॉन्वेंट की जो मुखिया थी एबेस माद्रे मारिया डेल पिलर, वो उनसे मिलती हैं। उनकी बातों से मार्केसा को एक नई समझ मिलती है।
कैसी समझ?
वो तय करती हैं कि अब वो अपनी बेटी को थोड़े कम स्वार्थ से प्यार करेंगी, अपने आसपास की दुनिया को, पेपिटा को ज्यादा खुले दिल से अपनाएंगी।
अच्छा, ये तो एक आध्यात्मिक बदलाव जैसा लगता है।
बिल्कुल। और विडंबना देखिए, जिस दिन वो क्लारा के नाम एक बिल्कुल नए किस्म का निस्वार्थ प्रेम से भरा खत लिखकर पुल पर कदम रखती हैं,
उसी पल पुल टूट जाता है।
हाँ, उनका वो आध्यात्मिक सफर जैसे अपनी मंजिल से ठीक पहले अधूरा रह गया।
और बेचारी पेपिटा?
वो भी साथ में चली गई। उसकी जवानी, उसकी सारी संभावनाएं, सब खत्म।
कितनी दुखद, मतलब ऐन उस वक्त जब जिंदगी शायद बदलने वाली थी।
बिल्कुल। और यही पैटर्न, या कहें कि मौत का ऐसा वक्त, हमें एस्टीबैन की कहानी में भी थोड़ा झलकता है।
एस्टीबैन वो जुड़वा भाइयों में से एक था।
हाँ, एस्टीबैन और मैनुअल। बचपन में उन्हें छोड़ दिया गया था और एबिसेस ने ही उन्हें पाला था।
उनका रिश्ता कैसा था?
उनका रिश्ता तो जैसे एक ही आत्मा दो शरीरों में हो। उनकी अपनी एक गुप्त भाषा थी। वो खुद को मैं नहीं, हम कहकर बुलाते थे। बहुत गहरा, बहुत निजी बंधन।
लेकिन ये बंधन टूटता है।
हाँ, तब टूटता है जब मैनुअल को पेरू की मशहूर एक्ट्रेस ला पेरिचॉल से प्यार हो जाता है और वो ये बात एस्टीबैन से छुपाता है।
ओ, यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं।
बिल्कुल। फिर कहानी और दुखद हो जाती है। मैनुअल ला पेरिचॉल का अपमान करने के बाद अपराध बोध से भर जाता है। उसके घुटने में चोट लगती है, वो जख्म बिगड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है।
तो एस्टीबैन के लिए तो जैसे
जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। ये सिर्फ भाई की मौत नहीं थी, ये उसकी अपनी पहचान का मिट जाना था। वो इतना टूट गया कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई। आत्महत्या की कोशिश भी की उसने।
बहुत गहरा दुख।
हाँ, पहचान का संकट था वो। लेकिन तभी कप्तान अल्वाराडो नाम के एक दयालु समुद्री कप्तान उसकी जिंदगी में आते हैं।
अच्छा।
वो एस्टीबैन को अपने साथ समंदर की यात्रा पर चलने का, एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका देते हैं।
एस्टीबैन हिचकते हुए मान जाता है
तो एक उम्मीद की किरण दिखती है।
हाँ, और सोचिए, जिस वक्त वो कप्तान से मिलने जा रहा होता है, एक नई शुरुआत की तरफ वो पहला नाजुक कदम बढ़ा रहा होता है,
उसी वक्त वो पुल पार कर रहा होता है
और पुल टूट जाता है।
फिर वही बात, एक संभावित मोड़ पर, एक नई शुरुआत की कगार पर मौत।
ये चीज वाकई सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई पैटर्न है? खैर, अगले किरदारों पर आते हैं। अंकल पियो और वो छोटा बच्चा डॉन जे में। अंकल पियो कैसे इंसान थे?
ओ, अंकल पियो वो तो बड़े दिलचस्प, रंगीन मिजाज के आदमी थे। दुनिया देखी भी, तेज दिमाग वाले, थोड़े निंदक भी।
अच्छा।
वो पहले कभी नौकर थे, कभी जासूस, कभी टीचर, फिर थिएटर एजेंट बने। उनकी जिंदगी में तीन बड़े जुनून थे।
क्या थे वो?
एक तो आजादी, दूसरा महान साहित्य की सुंदरता, और तीसरा एक्ट्रेस माइकेला विलेगास, यानी ला पेरिचॉल के प्रति उनका गहरा समर्पण।
ला पेरिचॉल?
हाँ,
वही जिनसे मैनुअल को प्यार हुआ था।
हाँ, वही। अंकल पियो ने ही माइकेला को एक मामूली कैफे सिंगल से पेरू की सबसे बड़ी स्टार बनाया था।
तो उनका रिश्ता कैसा था ला पेरिचॉल से? सिर्फ मेंटोर का
रिश्ता? थोड़ा पेचीदा था। वो उनके पिता जैसे भी थे, गुरु भी थे, और शायद अंकल पियो की तरफ से थोड़ा एक तरफा प्यार भी था उसमें। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब ला पेरिचॉल शोहरत और मंच छोड़कर धर्म कर्म में लग जाती है। वो पियो को एक तरह से झिड़क देती है, उनसे दूरी बना लेती है।
तो अंकल पियो के लिए तो ये बड़ा झटका होगा।
हाँ, उनकी जिंदगी का जैसे एक मकसद खत्म हो गया। उनका आखिरी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है ला पेरिचॉल के बीमार बेटे डॉन जेमे को गोद लेना।
अच्छा, उसे गोद लेना।
हाँ, और उसे एक जेंटलमैन बनाना, उसे संवारना जैसे उन्होंने उसकी माँ को संवारा था।
एक नई शुरुआत, एक नया मकसद।
बिल्कुल। और वो इसी नए इरादे के साथ उस बच्चे को लेकर लीमा जा रहे थे जब पुल टूटा।
तो ये पांचों लोग, मार्केसा, पेपिटा, एस्टीबैन, अंकल पियो, डॉन जेमेन, सबके सब अपनी जिंदगी के किसी न किसी अहम मोड़ पर थे, किसी बदलाव की दहलीज पर।
हाँ, ऐसा लगता है।
अब वापस भाई जूनिपर पे आते हैं। उनकी 6 साल की मेहनत, उनकी किताब, उसका क्या हुआ? क्या उन्हें वो जवाब मिला जो वो ढूंढ रहे थे?
जवाब तो मिला, पर शायद वो नहीं जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने अपनी वो भारी भरकम किताब पूरी की। उसमें उन्होंने बड़े तर्क के साथ ये साबित करने की कोशिश की कि इन पांचों की जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी थी, कोई दोष था, और ईश्वर ने उन्हें बिल्कुल सही, मुफीद वक्त पर अपने पास बुला लिया उनके भले के लिए।
अच्छा, तो उन्होंने एक पैटर्न ढूंढ लिया उनके हिसाब से।
हाँ, उनके हिसाब से। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त और दुखद मोड़ आता है।
क्या हुआ?
चर्च के अधिकारियों और जजों की कमेटी बैठी और उन्होंने भाई जूनिपर की किताब को धर्म विरोधी, विधर्मी करार दे दिया।
विधर्मी? क्यों?
उनका तर्क था कि ये दावा करना कि कोई इंसान ईश्वर के रहस्यों को, उसके इरादों को पूरी तरह समझ सकता है, ये अपने आप में ईश्वर का अपमान है, ये घमंड है, दुस्साहस है।
अरे, मतलब जवाब खोजने की उनकी पूरी कोशिश ही गलत मान ली गई।
बिल्कुल, निश्चितता की वो खोज ही विधर्म बन गई।
और भाई जुनिपर का क्या हश्र हुआ?
बेचारे भाई जुनिपर को सरेआम जिंदा जला दिया गया और उनकी किताब की जितनी प्रतियां थी सब नष्ट कर दी गईं।
हे भगवान, उनकी पूरी मेहनत, उनका विश्वास सब राख।
हाँ, एक तरह से उपन्यास के केंद्रीय सवाल पर ही सवाल उठाता है। शायद जिंदगी और मौत के पीछे कोई साफ सुथरा तर्क वाला पैटर्न ढूंढना मुमकिन ही नहीं है, या शायद ये कोशिश ही व्यर्थ है।
तो अगर जवाब भाई जुनिपर के तर्क में नहीं मिला, अगर वो रास्ता बंद हो गया, तो फिर उपन्यास हमें कहाँ ले जाता है, मतलब कहाँ मिलता है?
उपन्यास का जो आखिरी हिस्सा है वो हमें हादसे के एक साल बाद फिर से कॉन्वेंट में ले जाता है।
अच्छा,
यहाँ हम उन लोगों से मिलते हैं जो बच गए, जो पीछे रह गए, खासतौर पर दो औरतें, एबेस माद्रे मारिया डेल पिलार और ला पेरिचॉल।
एबेस कॉन्वेंट की मुखिया?
हाँ, वही नेक समझदार महिला जो हमेशा से पेरू की दुखियारी औरतों की सेवा करती आई हैं। और ला पेरिचॉल, वो अब पहले जैसी नहीं रही।
क्या बदलाव आया है उसमें?
वो हादसा, मैनुअल की मौत, अंकल पियो की मौत, इन सब ने उसे बदल दिया है। वो अपने पिछले जीवन के लिए पछतावे और दुख से भरी है। अब वो सेवा करना चाहती है, प्रायश्चित करना चाहती है।
तो इन दोनों का मिलना अहम है।
बहुत ज्यादा। एबेस उसे सहारा देती हैं, उसे समझाती हैं, और उनके साझा दुख में उन्हें एक नया मकसद, एक नई राह दिखती है। और तभी मार्केसा की बेटी क्लारा, वो भी स्पेन से वहां पहुंचती।
अच्छा, वो भी आ जाती है।
हाँ, और यहीं इन सब टूटे हुए दुखी लोगों के बीच एबेस को असली बात समझ आती है।
क्या समझ आता है?
वो समझती हैं कि जिंदगी का असली मतलब मौत की किसी रहस्यमयी योजना या पैटर्न में नहीं है।
तो फिर कहाँ है
वो? उन इंसानी रिश्तों में है, उस प्यार में है जो जिंदा लोगों को आपस में जोड़ता है। मरने वालों की यादें, उनका प्यार, वो जिंदा लोगों को प्रेरणा देता है एक दूसरे से प्यार करने की, करुणा दिखाने की।
तो वो पुल जो टूटा वो तो सिर्फ रस्सी और लकड़ी का था।
हाँ,
असली पुल कुछ और है।
बिल्कुल, एबेस को एहसास होता है कि असली पुल जो कभी नहीं टूटता वो प्यार और यादों का पुल है।
वाह,
यही वो पुल है जो जिंदों और मुर्दों की दुनिया को जोड़ता है। उपन्यास की जो आखिरी सबसे मशहूर पंक्ति है वो इसी एहसास को बयान करती है।
क्या है वो पंक्ति?
देयर इज अ लैंड ऑफ द लिविंग एंड अ लैंड ऑफ द डेड एंड द ब्रिज इज लव द ओनली सर्वाइवल द ओनली मीनिंग। मतलब जीवितों की एक दुनिया है और मृतकों की एक दुनिया है, और उनके बीच का पुल प्रेम है, वही एकमात्र चीज है जो बचती है, वही एकमात्र अर्थ है।
क्या बात है, कितनी गहरी और खूबसूरत बात है ये, और ये हमें सीधे उपन्यास के जो मूल विषय हैं उन पर ले आती है।
हाँ,
पहला तो यही लगता है, दुख में अर्थ की तलाश। भाई जुनिपर ने तर्क और धर्म से जवाब चाहा, लेकिन उपन्यास कह रहा है कि मतलब कहीं और मिलता है।
हाँ, वो इंसानी प्यार में, यादों में, करुणा में रचा बसा है, खासकर तब जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे हम समझा नहीं सकते।
और दूसरा बड़ा विषय है प्यार का स्वभाव। कितने अलग अलग तरह के प्यार दिखाए वाइल्डर ने।
बिल्कुल, मार्केसा का वो जुनून वाला, थोड़ा अधिकार जताने वाला प्यार, जुड़वा भाइयों का वो एक दूसरे में समाया हुआ सहजीवी प्यार, अंकल पियो का कला और कलाकार के लिए समर्पण वाला प्यार, और फिर एबेस का वो निस्वार्थ सेवा वाला प्यार।
और शायद संदेश ये नहीं कि प्यार परफेक्ट होना चाहिए।
हाँ, मुझे भी यही लगता है। शायद वाइल्डर कह रहे हैं कि सबसे टूटा हुआ, सबसे अधूरा प्यार भी जिंदगी को कुछ मतलब, कुछ मूल्य दे सकता है। वो प्यार अपने आप में मायने रखता है, उसकी परफेक्शन नहीं। शायद वो बात, जैसा भी है इश्क तो इश्क है।
बिल्कुल, और फिर वो बड़ा सवाल, किस्मत बनाम मर्जी, क्या सब तय है या सब संयोग?
उपन्यास इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता है ना। ऐसा लगता है कि जोर इस बात पर नहीं है कि मौत क्यों हुई,
बल्कि इस पर है कि जिंदगी कैसी जी गई, उसका मूल्य क्या था।
सही, और इसी से जुड़ा है जिंदा और मुर्दा लोगों के बीच का रिश्ता। जब तक मरने वालों को प्यार से याद किया जाता है
वो पूरी तरह से जाते नहीं।
हाँ, उनकी यादें जिंदा लोगों को जोड़ती हैं, हिम्मत देती हैं। जैसे कहते हैं ना, यादें ही तो हैं जो रिश्तों को जिंदा रखती हैं, वो यादें ही सहारा बनती हैं।
और एक चीज जो लगभग हर किरदार में दिखती है वो है अकेलापन और जुड़ाव की तड़प।
हाँ, ये बहुत मार्मिक है। मार्केसा, पेपीटा, इस्टेबान, अंकल पियो, सब कहीं ना कहीं गहरे अकेलेपन से जूझ रहे हैं। हर कोई दूसरे तक पहुंचना चाहता है, एक रिश्ता बनाना चाहता है, एक पुल बनाना चाहता है।
कहानी कहने के तरीके की बात करें तो वाइल्डर ने सर्वज्ञ कथावाचक का इस्तेमाल किया है ना?
हाँ, एक ऐसी आवाज जो सब जानती है, सबके मन में झांक सकती है। वो ज्ञानी है, हमदर्द है, पर थोड़ी दूरी भी बनाए रखती है, जैसे कोई बहुत पुरानी गहरी कहानी सुना रहा हो।
और उपन्यास की संरचना भी तो बहुत अनोखी है।
बिल्कुल, अंत से शुरू होती है पुल टूटने से, और फिर पीछे जाकर उन पांचों की कहानी कहती है, वो भी एक क्रम में नहीं।
इसे ध्यान बदल जाता है।
हाँ, हमारा ध्यान आगे क्या होगा से हटकर ये जिंदगियां क्यों मायने रखती थीं पर चला जाता है।
और प्रतीक, पुल तो सबसे बड़ा प्रतीक है ही।
हाँ, वो सिर्फ एक ढांचा नहीं है, वो जिंदगी और मौत के बीच की नाजुक कड़ी है, इंसानों के बीच रिश्तों का प्रतीक है, और आखिर में जैसा एबिस समझती हैं, वो प्यार का पुल बन जाता है।
और खत, मार्केसा के खत,
वो भी अहम है। वो दिखाते हैं कि शब्द कितने ताकतवर हो सकते हैं, वो जोड़ भी सकते हैं और दूरियां भी पैदा कर सकते हैं।
उपन्यास में विडंबना, आयरनी का भी बहुत इस्तेमाल है।
ओ जबरदस्त भाई, जुनिपर का हश्र तो सबसे बड़ी विडंबना है। जवाब खोजने निकले थे और खुद ही सवाल बन गए। और मरने वालों की मौत का वक्त भी, सबके सब किसी न किसी बदलाव, किसी नई शुरुआत की दहलीज पर खड़े थे।
तो क्या हम इसे एक तरह की दृष्टांत कथा कह सकते हैं? मतलब एक कहानी जो कोई गहरा नैतिक या दार्शनिक सबक देती हो।
हाँ बिल्कुल, कहा जा सकता है, इसे एक दार्शनिक कहानी की तरह पढ़ा जा सकता है। किरदार सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो जैसे इंसानी जिंदगी के अलग अलग अनुभवों, इच्छाओं, कमजोरियों के प्रतीक हैं।
वाइल्डर की भाषा भी बहुत सधी हुई, साफ और काव्यात्मक है।
हाँ, जो इसे एक कालातीत कहानी का एहसास देती है। इसका जो भावनात्मक असर है वो बहुत गहरा है। एक उदासी है इसमें, लेकिन अंत में एक उम्मीद भी जगती है।
क्या सिखाती है ये कहानी?
ये सिखाती है कि जिंदगी की कीमत शायद उसकी लंबाई से नहीं, बल्कि उसकी गहराई से है, उसके रिश्तों से है, उसमें महसूस किए गए प्यार से है। ये हमें उन सवालों से आगे ले जाती है, जैसे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ,
और किस तरफ ले जाती है।
ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब दुनिया में ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं, तो एक इंसान के तौर पर हमारी एक दूसरे के प्रति क्या जिम्मेदारी है।
सच कहा, अंत में ये कहानी यही तो दिखाती है कि दुनिया की सारी उथल पुथल, सारे दुख और नुकसान के बीच भी इंसान का इंसान से जुड़ाव, प्यार और यादें वही है जो हमें सार्थकता का, मतलब का एहसास दिलाती हैं।
बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि ये किताब, मतलब लगभग 100 साल होने को आए, आज भी इतनी प्रासंगिक लगती है। ये हमारे अपने जीवन में हमदर्दी की, रिश्तों की, यादों की अहमियत को फिर से उजागर करती है।
तो सवाल शायद ये नहीं कि ऊपर कोई बड़ी योजना है या नहीं।
हाँ, शायद सवाल ये है कि हम एक दूसरे के लिए वो प्यार का, वो यादों का पुल कैसे बन सकते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।